नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट रात्रि भोज में गोली चलने के बाद सुरक्षित निकाला। हमलावर को हिरासत में लिया गया। अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे अपने वार्ताकारों का दौरा रद्द किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा, दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के उच्चतम स्तर पर। और महिला क्रिकेट में भारत ने जोहानिसबर्ग में खेले गए चौथे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के वाशिंगटन में होटल हिल्टन में आज व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन रात्रि भोज में एक अज्ञात व्यक्ति ने गोलीबारी की। इस आयोजन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलोनिया ट्रंप तथा उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे। तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यह घटना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समर्पित एक कार्यक्रम में हुई, जिसका उद्देश्य दोनों पार्टियों के सदस्यों और मीडिया को एक साथ लाना था। उन्होंने बताया कि हथियारबंद हमलावर को सीक्रेट सर्विस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने काबू कर लिया और उन्होंने उनकी त्वरित कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को बहुत करीब से गोली मारी गई थी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनकी जान बच गई और अब उनकी हालत स्थिर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि कार्यक्रम को 30 दिनों के भीतर फिर आयोजित किया जाएगा। खबरों के अनुसार एक हमलावर ने उस कमरे के बाहर गोलीबारी की जहां राष्ट्रपति और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। अधिकारियों ने आसपास की सड़कों को सील कर दिया है और पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के साथ वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अब ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने लंबी यात्रा, अधिक लागत और ईरान के उच्च स्तरीय सहयोग की कमी का हवाला देते हुए वार्ताकारों की यात्रा रद्द की है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ओमान दौरे के बाद इस्लामाबाद जा सकते हैं। इससे अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की संभावना बढ़ गई है। शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुंचे श्री अराग़ची ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। श्री अराग़ची कल अमरीका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए पाकिस्तान को अपनी मांगों की सूची साझा करने के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो गए। उन्होंने कहा कि ईरान ने एक व्यवहारिक रूपरेखा प्रस्तुत की है। श्री अराग़ची ने अमरीका के कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध होने पर सवाल उठाया। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इसराइल रक्षा बलों को लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करने का आदेश दिया है। इसराइल के सरकारी प्रेस कार्यालय ने कहा कि ईरान के मामले में श्री नेतन्याहू की राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह से बहुत कड़ा दबाव डाल रहे हैं। श्री नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल तथा लेबनान के बीच ऐतिहासिक शांति स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्ला इसमें बाधा डालने की कोशिश रहा है। श्री नेतन्याहू ने कहा कि और वह उत्तरी क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा बहाल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इससे पहले इसराइल रक्षा बलों ने बताया कि उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया है, जिसने 7 अक्टूबर को इसराइल की सीमा में घुसपैठ की थी। इसराइल रक्षा बलों ने यह भी बताया कि दक्षिणी लेबनान में 146वीं डिवीजन के सैनिकों ने हिजबुल्ला आतंकवादी संगठन से संबंधित एंटी टैंक मिसाइलों का एक जखीरा खोज निकाला है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा है कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध अपने उच्चतम स्तर पर हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों देश कूटनीतिक रूप से क्वाड सुरक्षा संवाद में साथ हैं और हिंद प्रशांत पर एक समान विचार रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों की एक मजबूत पूरक अर्थव्यवस्थाएं हैं। भारत में ऑस्ट्रेलियन डिफेंस स्टाफ के प्रमुख डामियन हिल ने कहा कि दोनों देशों के संबंध 4 वर्षीय व्यापक रणनीतिक भागीदारी से आगे हैं। वैश्विक तनाव पर श्री ग्रीन ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य और पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य तनाव घटाना चाहिए। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। माली की राजधानी और दूसरे शहरों में कई जगहों पर आतंकियों और अलगाववादियों ने हमले किए। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन JNIM ने अपनी वेबसाइट पर बामाको के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मध्य और उत्तरी माली के 4 अन्य शहरों में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन ने बताया कि ये हमले अलगाववादी संगठन आजाद लिबरेशन फ्रंट के साथ मिलकर किए गए। माली को पहले भी अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े संगठनों द्वारा छेड़े गए विद्रोहों और साथ ही उत्तर में अलगाववादी बगावत का सामना करना पड़ा है। माली की सेना ने कहा कि कुछ अज्ञात हथियारबंद आतंकी समूहों ने बमाको में कुछ खास जगहों पर और बैरकों को निशाना बनाया। सेना ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। माली अपने पड़ोसी देशों नाइजर और बुर्किना फासो के साथ मिलकर लंबे समय से अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े हथियारबंद समूहों से लड़ रहा है। इस बीच भारतीय दूतावास ने माली में अपने नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। बमाको स्थित भारतीय दूतावास ने परामर्श में कहा है कि हालिया सुरक्षा घटनाक्रमों को देखते हुए माली में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से आग्रह करता है कि वो सतर्क रहें और माली की अधिकारियों द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करें। भारतीय दूतावास ने कहा है कि वो माली के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वहां की बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से आग्रह किया है कि वह दूतावास की वेबसाइट और दूतावास के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से दूतावास के संपर्क में रहें। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को यह भी सलाह दी है कि किसी भी आपातकालीन सहायता की स्थिति में वे दूतावास से टेलीफोन नंबर 2237848601 पर संपर्क कर सकते हैं। कोलंबिया के काजिबियो में एक बम में विस्फोट होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हो गए। कोलंबियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल ह्यूको लोपेज ने विस्फोट को आतंकी कार्रवाई बताया। इवान मॉडेस्को नामक व्यक्ति और जेमे मार्टिनेज नामक समूह से जुड़े नेटवर्क को धमाके का दोषी बताया गया। ये दोनों समूह कोलंबिया के अब निष्क्रिय हो चुके विद्रोही सशस्त्र गुटों के पूर्व सदस्यों से बने हैं जो इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन गुटों ने सरकार के साथ 2016 के शांति समझौते का पालन नहीं किया। यूक्रेन के निप्रो शहर में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में 5 लोगों की मौत हो गई और 46 अन्य घायल हो गए। क्षेत्रीय प्रमुख अलेक्जेंडर हंसा ने बताया कि रात भर चले इन हमलों में तबाह हुए एक घर के मलबे से मृतकों के शव बरामद किए गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये ताजा हमला लगभग पूरी रात जारी रहा। बचावकर्मी निप्रो में मलबे के नीचे दबे जीवित लोगों की तलाश में जुटे रहे। इस बीच रूस के बेलग्रोद क्षेत्र में एक ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष घायल हो गया। यूक्रेन ने रूस की सीमा के काफी अंदर तक कुछ ड्रोन हमले किए। फिलिस्तीन के लोगों ने लगभग 2 दशकों में पहली बार स्थानीय चुनावों में मतदान किया। इसमें 2006 के बाद गजा में होने वाला किसी भी तरह का पहला चुनाव भी शामिल है।
वेस्ट बैंक के साथ साथ मध्य गाजा के ईडेर अल बलाह में भी चुनाव हुए। इस क्षेत्र में हमास सक्रिय है। गाजा के ईडेर अल बलाह इलाके में 70,000 योग्य मतदाता हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मतदान का प्रतिशत कम रहा। ईडेर अल बलाह में लगभग 13.8% और वेस्ट बैंक में 25.3% मतदान हुआ। हमास को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी और कई अन्य गुटों ने भी इसका बहिष्कार किया। उम्मीदवारों के लिए यह शर्त रखी गई थी कि वे फिलिस्तीन मुक्ति संगठन PLO के अधिकार को मान्यता दें। यह संगठन वेस्ट बैंक के उन हिस्सों पर शासन करता है जो इसराइल के नियंत्रण में नहीं है। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाले गुट फतह को गाजा में पिछले चुनावों के बाद हिंसक रूप से सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
जोहानिसबर्ग में भारत ने चौथे महिला T20 क्रिकेट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 185 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 9 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए और 36 रन की नाबाद पारी खेली। दीप्ति शर्मा को हरफनमौला खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे अंतर्राष्ट्रीय विश्व खेल संघ में शामिल हो गया है। जिनेवा में लुजाने के ओलंपिक संग्रहालय में वार्षिक आम बैठक में कल ये निर्णय लिया गया। फिडे के अध्यक्ष अकाडी डोरगोकोविच ने कहा कि शतरंज एक वैश्विक खेल है और सभी महाद्वीपों के लाखों खिलाड़ियों को एकजुट करता है। सऊदी अरब के अल अहली फुटबॉल क्लब ने AFC चैंपियंस लीग का खिताब फिर जीत लिया है। जद्दा में कल खेले गए फाइनल में अल अहली ने जापान के माचीदा जेल्विया फुटबॉल क्लब को 1-0 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट रात्रि भोज में गोली चलने के बाद सुरक्षित निकाला। हमलावर को हिरासत में लिया गया। अमेरिका ने ईरान के साथ वार्ता के लिए इस्लामाबाद जा रहे अपने वार्ताकारों का दौरा रद्द किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों के उच्चतम स्तर पर। और महिला क्रिकेट में भारत ने जोहानिसबर्ग में खेले गए चौथे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन से हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।